नमस्कार, मैं भक्ति आप सबका स्वागत करती हूं। दर्शकों, अल्टीमेट लिविंग का जो सीक्रेट है, सीक्रेट्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग, इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए आज फिर से हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर सचिन। डॉक्टर सचिन, आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ये जो चाबियां है, इसका मिसयूज न हो और यह चाबी बहुत अच्छी तरह से हम यूज कर सकते हैं। या आपने ये भी कहा कि परमात्मा ने हमें कई प्रकार के खजाने दिए हैं। हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक है, क्या इन खजानों को आप विस्तार से कह सकते हो?
क्या नहीं है मनुष्य के पास। मुझे एक कहानी अच्छी याद आ रही है कि एक बहुत संपन्न व्यक्ति था और बहुत धन था उसके पास। तो उसने सोचा, मैंने तो मेहनत से ये सब कमाया है, लेकिन मेरे बच्चों को शायद इसकी वैल्यू नहीं पता चले, इसलिए मैं इनको गरीब लोगों के साथ रखना चाहिए मुझे, ताकि ये इनकी वैल्यू इनको पता चले। तो वो अपने बच्चे को एक गांव में भेज देता है और कहता है कि जाकर तुम इस गांव में रहो और देखो कितनी गरीबी होती है दुनिया में, तो तुमको पता चलेगा। तो वो बच्चा गांव में जाता है और उन लोगों के साथ में रहता है जिनको घर नहीं है ठीक तरह से, बहुत कुछ सुविधा है उनके पास नहीं। और एक महीने के बाद वो जब वापस आता है, तब पिता उसको पूछता है बच्चे को, चलो इसको पता तो चल गया होगा अभी गरीबी क्या, हम कितने भाग्यवान है। तो बच्चे को पूछता है कि क्या सीखा तुमने। तो वो बच्चा कहता है कि बाबा पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको वहां पे भेजा। तो पिता पूछता क्या हुआ। तो कहता है कि पापा, हमारे पास तो दो ही कुत्ते हैं, उनके पास बहुत सारे कुत्ते हैं।
अच्छा।
हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, उनके गांव में तो नदी बहती है।
वाह।
हम जहाँ पे रहते हैं, तो मेरे रूम में आपने अलग अलग स्टार्स लगाए हुए हैं मेरे बेडरूम में, वहां पे तो हम छत के नीचे ऐसे सोते, डायरेक्ट आकाश में हजारों तारे हमको दिखाई देते हैं। आज पापा मेरे को पता चला कि हम कितने गरीब है।
तो उनके पापा को तो ये जवाब बिल्कुल ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था।
यही सीखने जैसी बात है और यही सीक्रेट मैं कहना चाहता हूँ सबको। ये मैंने रियलाइज किया, मैं खुद अपना अनुभव कहता हूँ। मेरा भी जो बचपन गया, एक चाल में गया, मुंबई के चाल में, और गरीबी में हम जस्ट टू रूम किचन में हम रहते थे छह लोग। और उस समय जब आकाश से एरोप्लेन जाता था, तो हम बच्चे बहुत जोर जोर से तालियां बजाते थे कि एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, और कभी सोचा भी नहीं था। और आज हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो मुझे वो सुख नहीं जो बचपन में मैं एरोप्लेन का। फिर मैं सोचता था कि चलो गाड़ी में लोग घूमते, कार भी उस समय हमारे जमाने में बहुत कम लोगों के पास होती थी।
सही बात है।
जब मैं छोटा था, आज मैं देखता हूँ कि दो दो कार है, लेकिन वो बचपन का जो सुख है वो मुझे अभी तक, वो कार का जो सुख जो मैं बचपन में सोचता था, मैंने देखा कार में नहीं है, जो शुरुआत में मेरे को खुशी थी। ऑफकोर्स विथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन और जो सीक्रेट्स मिलने के बाद वो लेस इम्पोर्टेंस, लेकिन मैं अपनी जर्नी के बारे में सोचता हूँ। जब कंप्यूटर्स आए तो मैं बहुत खुश हुआ कि कंप्यूटर्स लोग सीख रहे, हमको भी सीखना चाहिए, क्या मेरे पास ऐसा कंप्यूटर हो सकता है क्या अपने लिए खुद। आज दो दो लैपटॉप पास में है, और फिर मैं देखता हूँ कि ये सब चीजों को मैं ऐसा सोचता था कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि इन सब चीजों में सुख नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि हमें इसको यूज नहीं
करना। नहीं, यूज जरूर करना चाहिए, ये हमारे लिए, लेकिन हम इनके लिए नहीं है, इतना जरूर ध्यान में रखें। यही गलती होती
है, कहा जाता है साधन है पर साधना चाहिए।
यस, ये हमारे लिए है, और सुविधा और सुख में फर्क है।
लेकिन डॉक्टर, क्या होता है कि आज हम इन साधनों को यूज करते करते उसमें डिपेंड हो गए हैं, और ये डिपेंडेंसी जो है, उस डिपेंडेंसी के ही शायद कारण आज हमारी चाबी जो आप बोल रहे हैं, शायद हम उसको यूज सही तरीके से नहीं कर रहे कहो, या उसको यूज करने का जो कुछ हमारा तरीका है वो गलत है। तो उसमें आप क्या बोलेंगे?
यही दो बातें मैं बता रहा हूँ कि एक तो खजाने आपने पूछा, तो खजाना यही है कि हमारी जो सुख है, जो हम इनको ढूंढ रहे वो सुख वहां नहीं है, सुख हमारे अंदर ही है, लेकिन हमने क्या समझा कि ये साधन माना ही सुख है। ये साधन सुख नहीं है, साधनों से सुविधा मिलती है पर सुख की गारंटी नहीं है।
वो तो है।
अगर साधनों में सुख होता तो जिसके पास सबसे ज्यादा साधन है वो सबसे सुखी होते हैं, ठीक है, वैसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम देखते हैं जिनके पास कम साधन है वो भी सुखी हो सकते हैं और सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये खजाने जो हमको परमात्मा ने दिए, ये खजाने हमारे अंदर है, हम फिर से कह रहे हैं यही सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग है कि ये बाहर से अंदर नहीं जा रहे, ये अंदर से बाहर जा रहे हैं।
ओके,
ठीक है, मैं सुखी हूं इसलिए मुझे सब अच्छा लगता है, सब अच्छा मेरे पास हो तो मैं सुखी होऊंगा, ये गलत है। आप बाहर से अंदर जा रहे, अंदर से बाहर जाना चाहिए। तो हमको बेसिकली ये चीजें चाहिए, ये खजाने हैं। और चाबी की जो आपने बात की, एक ही हमको ये सीखना है कि अगर मैं अपने संकल्प शक्ति को यथार्थ रूप से इस्तेमाल करो तो ये खजाने मेरे पुश अप बटन पे है, जैसे हम किसी बटन को दबाते हैं और मेरे पास लाइट आ जाता है, अंधेरे में लाइट आ जाता है, उस तरह से ये होता है।
आपने कहा कि संकल्प शक्ति, ये संकल्प शक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये संकल्प शक्ति क्या है, कैसे हम इसको बहुत अच्छी तरह से सकारात्मक ले सकते हैं, और इन संकल्पों का प्रभाव हमारे ऊपर कहाँ तक पड़ता है।
कोई नई बात नहीं है, कई बार लोगों को लगता है कि सीक्रेट शब्द डाल के हम कोई तो नई बात सुनाने जा रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं सुनानी है, ये सब बातें पहले से ही है, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, सभी लोगों को भी पता है, ऐसे नहीं कि पता नहीं है, फर्क इतना ही है कि इसको यथार्थ रूप में विधि पूर्वक यूज करना नहीं आता है, उसमें फर्क पड़ जाता है।
तो वही विधि हम आपसे सीखना चाहते हैं।
वो विधि यह है कि थोड़ा पहले इसको महसूस करो कि ये शक्ति कैसे आपके अंदर है और कैसे ये वेस्ट जा रही है। जैसे मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरे को एक तो पता नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, दूसरा मेरे को पता ही नहीं कि वो मेरे पैसे कोई दूसरा लेके जा रहा है और मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूं। ये दो बातें मेरे को पता चल गई, और तीसरी बात, ये पैसों को अगर मैं सही रूप में इस्तेमाल करूं तो मेरे बहुत सारे समस्याएं कम हो सकते हैं। तो पहली बात, मेरे पास ये धन है या खजाना है, अलग अलग हमने इसको नाम दिया, वो क्या है, तो इसके महत्व को हम जानेंगे। आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें दिखाया है कि व्हेन यू थिंक यूनिवर्स मूव्स, ऐसा अंग्रेजी में एक वाक्य है, बहुत शक्तिशाली मेरे को लगता है कि जब मैं सोचता हूं पूरा विश्व हिल जाता है। अभी जब मैं ये वाक्य को महसूस किया तो मैंने रियलाइज किया कि क्या शक्ति है इस वाक्य में, कि व्हेन आई थिंक, जब मैं सोचता हूं तो पूरा यूनिवर्स, पूरा विश्व कैसे हिलता है।
वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि थिंकिंग से विश्व हिलता है तो वो कैसे हिलता है, और उसको हम किस प्रकार से सही ढंग से हिला सकते हैं।
एग्जैक्टली, मैं बचपन में सुनता था कि भगवान को जब नई रचना रचनी थी तब उसने पहले संकल्प किया कि मेरे को नई रचना रचनी है, और उसने नई दुनिया बनाई, ठीक है ना, ब्रह्मा के द्वारा नई रचना रची।
शास्त्रों में भी वर्णन है कि संकल्प शक्ति से उन्होंने सृष्टि रची।
भारत ने ये विचार पूरे विश्व को दिया कि संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। तो मैं सोचता था ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन आज 2013 में 21वीं शताब्दी में हमको साइंस से कह रहा है। थोड़ा साइंस की भाषा में कहूंगा कि इस समय हम सब पुल ऑफ एनर्जी में है, एनर्जी के समुन्दर में हम है। कैसे? ये पूरा जो भी दिखाई देता है एक प्रकार की ऊर्जा है, ऐसे हमको साइंस कहता है, एनर्जी है, और वो एनर्जी एक समुन्दर की तरह है।
अच्छा,
ठीक है ना, जैसे समुन्दर विशाल महाकाय होता है वैसे एनर्जी
अनंत है,
अनंत है, बहुत विशाल समुन्दर है, और ये समुन्दर और कुछ नहीं लेकिन विचारों का समुन्दर है। कैसे? आप कल्पना करो, इस पृथ्वी के ऊपर इस समय 700 करोड़ लोग रहते हैं, और हर इंसान से कुछ प्रकंपन निकल रहे हैं,
वाइब्रेशन जिसको हम कहते हैं,
प्रकंपन कहो, वाइब्रेशन कहो, वृत्ति कहो, अलग अलग नाम दिए, पर कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। ये एनर्जी जड़ पदार्थों से भी निकलती, जैसे ये टेबल है इससे भी वो प्रकंपन निकलते हैं, ठीक है ना, और आजकल हम इसको कैमरा में भी कैच कर लेते हैं, हमने इसको प्रभा मंडल कहते हैं या ऑरा कहते हैं, बट ये एनर्जी है, और भौतिक शास्त्र के अनुसार हर पदार्थ से, हर व्यक्ति से ये प्रकंपन निकलते हैं।
ओके,
तो हम इस प्रकंपनों के समुन्दर में है, ठीक है ना। अभी जब मेरे को
गोते खा रहे हैं
ये भी कह सकते हैं।
समुन्द्र में भी बहुत अच्छी तरह से तैरना आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो अल्टीमेट हो गया।
एग्जैक्टली।
तो वो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे हम इस समुन्द्र में रहते हुए भी बहुत अच्छी तरह से उसको एंजॉय करें। आज हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जैसे गोते खाना तो एंजॉयमेंट है नहीं, तो उसको आप जरा प्रकाश डालिए।
मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह तक मैं अच्छा था, शाम को पता नहीं मेरा मूड ऑफ हो गया। तो ये मूड ऑफ हो गया जो शब्द है ना, उसको बहुत संभालना है। जैसे ही आप कहते हो मूड ऑफ हो गया है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, दो चीजें हो रही हैं। या तो आप जिस विचारों के समुन्द्र में है, आपके पास कुछ ऐसे प्रकंपन आ रहे जो आपके नहीं है। जैसे कि आप
पहचाने,
वही मैं कह रहा हूँ, पहले दो बातें समझ लें कि ये बादल जैसे कि आ रहे हैं। बादल आ गया, अंधेरा हो गया, मेरे को इतना पता चलता कि अंधेरा हो रहा है, पर क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। एक बाहर से बादल आ रहे हैं, एक मैं बादलों को जन्म दे रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों बातें हो रही हैं और दोनों कंटिन्यूअसली। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक शरीर का दर्द है और एक मन का दर्द है मेरे विचारों का, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों भी दर्द होने तो कोई बात नहीं, मेरे को सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। और सॉल्यूशन यही है कि मेरे को अपने सूर्य को जगाना है। बादल कहां से भी आने दो, मेरे को अपनी लाइट इतनी बढ़ानी है कि बादलों का मेरे ऊपर इफेक्ट ना पड़े। दो बातें मेरे को करनी।
ये सूर्य है कहां?
ये सूर्य हमारे अंदर है और हम खुद ये सूर्य है। और इसके लिए यही ये सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में हम बताते हैं कि जैसे अगर आपने सोचना बदला, बार बार हम आ रहे हैं कि जैसे हम अपने चाबी को घुमा रहे हैं, संकल्प को बदल रहे हैं, हमारी सृष्टि बदलेगी। क्योंकि प्रिंसिपल वही है, व्हेन यू थिंक यूनिवर्स मूव्स। यूनिवर्स माना बड़ी कोई बात के बारे में नहीं सोचो, पहले तो अपने शरीर से चालू करो। ये शरीर एक समुन्दर है जिसमें आप है कंटिन्यूअसली। फिर आपके साथ में रहने वाले आपके घर वाले, वो भी आपके साथ है समुन्दर में। आप ऑफिस में जो जाते हैं वो एक समुन्दर है। आप जिस समाज में रहते हैं वो एक समुन्दर है। आप जिस राष्ट्र में रहते हैं उसका एक समुन्दर है।
डॉक्टर, आपने अभी कहा कि उसको परिवर्तन करना है, लेकिन ये परिवर्तन की दिशा तो जाननी चाहिए ना। तो ये परिवर्तन की दिशा के बारे में हमें बताओ, या परिवर्तन कैसे करना है और उसकी सहज युक्ति क्या है?
उसकी सहज युक्ति यही है कि आप साइलेंस में जाओ, जैसे पिछली बार हमने कहा, साइलेंस में जाओ और अंदर अपने को देखो। देखो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो कई बार मैंने देखा हरेक की जागृति का स्तर अलग अलग होता है। कई लोगों को पता चलता है, हाँ मेरे ये विचार चल रहे हैं, मेरे अंदर ये भावना का सैलाब चल रहा है।
मतलब जैसे कि हम कहते हैं मेरा इनर माइंड कुछ कह रहा था, उसको हम ऐसा कहेंगे?
माइंड शब्द मैं अभी नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि माइंड शब्द जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, हरेक के मन के अंदर या हरेक के दिमाग के अंदर या हरेक के अंदर अलग अलग फाइल खुलती है। क्योंकि साइंटिस्ट माइंड माना ब्रेन को समझते हैं, ब्रेन ही माइंड है। जब आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कहता है कि मन एक प्रकृति का हिस्सा है, ये भी एक लोग मानते हैं। कई स्पिरिचुअल कहते हैं व्यक्ति की मन आत्मा का एक हिस्सा है। तो माइंड शब्द न इस्तेमाल करके मैं जानबूझकर आंतरिक शक्ति इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर उसको नाम देना हम धीरे धीरे देखेंगे। हमारे अंदर क्या चल रहा है पहले उस प्रोसेस को देखो, साक्षी होके, तो आपको पता चलेगा कि कुछ तो चल रहा है मेरे अंदर।
साक्षी होना ये थोड़ा हमको
कठिन है, कठिन है शुरुआत में, क्योंकि हमारा पूरा अभ्यास दूसरों को देखने में जाता है।
तो
जिंदगी भर हम दूसरों को देखते रहते तो बहुत मुश्किल है, हमारी ऊर्जा बाहर जा रही है, वेस्ट जा रही है। आपको थोड़ा अंडर टर्न करना पड़ेगा। उसके लिए शुरुआत में मैं ये कहूंगा कि आप एकांत में चले जाओ, जहां पे आपको डिस्टर्ब कोई ना करे, और सिर्फ अपने को देखो, अपने को देखो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या मैं अपने विचारों को पकड़ पा रहा हूँ। कई बार उसकी भी क्लैरिटी नहीं होती, कुछ तो चल रहा है लेकिन क्या चल रहा है पता नहीं। धीरे धीरे जैसे आप देखना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा, अरे मैं और ऐसा सोचता हूँ, ये मेरे विचार है।
नहीं, कभी कभी सचमुच डॉक्टर ऐसा लगता है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, लेकिन ये सोचने के बाद की प्रोसेस है ना, तब तक सोचा हुआ रहता है। और जैसे कि आपने कहा कि ऊर्जा तो चली गई।
एग्जैक्टली, कोई बात नहीं। आप एक दिन में बीमारी ठीक नहीं होगी, ठीक है ना। मलेरिया का 3 दिन का इलाज होता है, टाइफाइड का 14 दिन का इलाज होता है, टीबी का 6 से 9 महीने इलाज होता है।
तो इसका इलाज का भी कुछ समय है,
बीमारी के ऊपर है। जितनी पुरानी बीमारी उतना लंबे इलाज है,
हर पर्सन का वो अलग अलग।
यस, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। yes. आपको देखना है पहले मेरे अंदर क्या बीमारी है। तो आपको अपनी बीमारी का डायग्नोस करना है। यहाँ पे हम आपको सीक्रेट दे रहे हैं, सीक्रेट ये दे रहे हैं कि बीमारी भी आप हो, डॉक्टर भी आप है, आपके पास दवाई भी है, आपको सिर्फ आपको उसको यूज करना आना चाहिए। तो उसका फर्स्ट स्टेप अपने आप को देखो। जैसे आप देखते जाएंगे अपने आप को, आपको पता चलेगा अरे इतना अंधेरा है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते कि डॉक्टर साहब पहले तो हम बहुत अच्छे थे, जब से आपने मेडिटेशन करने को बोला तब से और अशांति का अनुभव होता है। मैंने कहा दैट इज अ गुड साइन, कम से कम बीमारी का डायग्नोसिस तो हो रहा है कि इतनी अशांति थी। पहले तो ये भी नहीं पता था इतनी अशांति है। पहले डायग्नोस करो आप,
मतलब हम कहाँ तक है।
यस,
इसका भी पता चलना चाहिए।
यस,
तो हम कहाँ जाने वाले हैं।
एग्जैक्टली,
इसका पता चलेगा।
जैसे अभी मेरे पास गाड़ी है, कार है, अभी कार मेरे को यूज करना ही पता नहीं है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आया, मेरे को उसका मैकेनिक्स ही पता नहीं, तो मैं उसको कैसे रिपेयर करके आगे कैसे लेके जाऊं।
एग्जैक्टली,
तो मेरी जिंदगी की गाड़ी भी अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि मुझे उसका रिपेयर मैकेनिज्म पता नहीं है, कैसे वो काम करते हैं, उसका एक्सेलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, और कार्बोरेटर में कचरा तो नहीं आया।
और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्सेलेटर के बजाय ब्रेक ही दबा देते हैं।
दोनों बातें हैं, या तो एक्सेलेटर ज्यादा है, या ब्रेक स्ट्रांग है, या क्लच ठीक नहीं, या आपकी पेट्रोल की टाके में लीकेज है। बहुत सारी बातें हैं अपने अंदर होती
है।
तो ये सब तभी पता चलेगा जब आप अपने साथ बैठोगे एकांत में। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आज का मनुष्य भाग रहा है, बस भाग रहा है, उसको देखने को टाइम ही नहीं है।
तो क्या भागना नहीं चाहिए?
भागना जरूर चाहिए, लेकिन भागते समय बीच बीच में रुक के देखना भी चाहिए कि मैं जिस दिशा में भाग रहा हूँ सही भाग रहा है नहीं, मेरा स्पीड ठीक है कि नहीं, मेरी गाड़ी ठीक है कि नहीं, मेरे गाड़ी के सभी इंजन बराबर है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को भाग रहा हूँ और सामने से भी कोई भागता हुआ आ रहा है या राइट लेफ्ट से आ रहा है,
बहुत सारे
एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मेरे को रोकना भी आना चाहिए, मेरे मैकेनिज्म के बारे में मेरे को पता चलना चाहिए। सीक्रेट्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग यही है कि अपने मैकेनिज्म को जानो, अपनी धरनी को जानो, अपनी बीमारी को डायग्नोस करो, जवाब भी आपको मिल जाएगा। हम भी देने वाले आपको जवाब। तो पहला डायग्नोस करो अपनी बीमारी को, पता करो कि मेरे कौन से विचार चलते हैं, मेरे विचारों की स्पीड क्या है, मेरे अंदर कौन सी भावनाएं हैं, उसमें से कितनी भावनाएं सुख देने वाली है, कितनी भावनाओं के बाद मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूं, क्या मेरी भावनाएं विशेष परिस्थिति में ही अनकंफर्टेबल होती है या हर बार मैं वैसे ही रहता हूं।
बहुत कैसे? सारी बातों को ऑब्जर्व करना है।
yes.
पहली स्टेप मैं समझती हूँ ये है कि स्वयं का ऑब्जर्वेशन।
यस,
और उसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन तो हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या?
एक बार आपने ऑब्जर्व किया, मैं फिर से कह रहा हूँ ऑब्जर्व करना इजी नहीं है, इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। आप भी बहुत फास्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्व करो, इसमें जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि बीमारी का हर कीटाणु मेरे को पता होना चाहिए। कई बार हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस इन्फेक्शन भी होता है, वायरसेस भी होते हैं, तीनों का इलाज अलग अलग है। तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए। हमको जो बताया गया है कि जीवन का पहला और आखिरी अध्याय एक ही है, वो है मैं कौन। पहले दिन में हम यही सवाल पूछते हैं मैं कौन, और लास्ट डे में भी हमारा प्रश्न वही रहता है, सिर्फ जवाब बदलता रहता है। क्योंकि जितना जवाब बदलता जाता है उतना मुझे अपने बारे में क्लैरिटी आती जाती है। तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो, साक्षी होके देखो, साइलेंस में बैठो, और तब आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। चाबी उधर ही है, क्या करना उधर ही है। सिर्फ देखते जाएंगे तो आपको सोल्यूशन भी मिलेगा कि यहां मैं थोड़ा भाग रहा हूं, मुझे अभी स्लो करना चाहिए, यहां मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, मेरे को कम करना चाहिए। जैसे आप साक्षी होकर देखने लगते हैं, आपको उधर ही सोल्यूशन मिलने लगता है। तो फर्स्ट स्टेज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को देखो, और देखने के बाद फिर आपकी जैसे बीमारी आपने डायग्नोस किए, फिर आप दवाई का इस्तेमाल चालू कर दो। वो दवाई या तो आपको खुद मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती तो हम आपको रेडीमेड देंगे।
नहीं, हमको तो रेडीमेड की ही आजकल आदत हो गई है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो आपने कहा बहुत सुंदर, कि स्वयं का ऑब्जर्वेशन करो, और उस ऑब्जर्वेशन में भी जल्दबाजी नहीं करो। तो उस ऑब्जर्वेशन के लिए आपने अभी बीच बीच में मेडिटेशन शब्द यूज किया, तो उसके लिए किस प्रकार की विचारों की प्रवाह जरूरी है, किस दिशा में हमारा विचार कहो या मेडिटेशन के जरिए हम कैसे उस तक आ सकते हैं, ये हमें आप जरा विस्तृत जानकारी।
अभी हम इसका अनुभव करते हैं।
वाह बहुत सुंदर।
हम सब साइलेंस में बैठेंगे, आप अपने आप को ऐसे स्थान पर रखो जहां आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपका मोबाइल है तो उसको साइलेंट मोड पर रखो, कोई महत्वपूर्ण आप कार्य कर रहे तो उसको रोक दो ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एकदम रिलैक्स होके बैठे, अपने आप को एकदम हल्का छोड़ देंगे आप, शांत हो जाइए। अगर आपको आंखें खुली रख के एकाग्र होना कठिन हो रहा है तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का हो जाइए। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा एकदम हल्का छोड़ दीजिए, शांत और रिलैक्स। महसूस कीजिए आपका संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत और हल्का, बिल्कुल हल्का होते जा रहा है। एक से पांच मैं उल्टा गिनूंगा, जैसे पांच से एक की तरफ आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे, पांच और हल्के, चार और हल्के होते जा रहे, तीन, बहुत अच्छा लग रहा है महसूस करेंगे, दो और एक, बिल्कुल शांत और हल्कापन महसूस हो रहा है। अपना ध्यान दो आंखों के बीच में लेके जाइए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अपने आप को देखिए, देखिए आपके अंदर क्या क्या प्रकंपन है। बहुत शांति से, बहुत धैर्यता से देखिए आपके कौन से विचार हैं। उसके साथ फाइट मत कीजिए, उनको रोकने की कोशिश नहीं कीजिए, केवल देखते जाइए कौन से विचार चल रहे हैं, उन विचारों की गति क्या है, क्या बहुत भाग रहे हैं विचार। सिर्फ देखते रहिए, उनको क्लासिफाई भी मत कीजिए कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। कौन से विचार चल रहे हैं मैं देख रहा हूं अपने आप को, बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए अपने आप को। देखिए आपके अंदर कौन सी भावनाएं आ रही हैं, क्या आप कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, और अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, शांत और रिलैक्स। महसूस करो आपको कैसा लग रहा है, आप अपने आप को देख रहे हैं। आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं बिल्कुल शांत हूं। मेरे अंदर जो भी विचार चल रहे हैं मैं उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उनको साक्षी होके देख रहा हूं। मेरे विचार भी शांत होते जा रहे हैं, मेरा शरीर और मन भी शांत होते जा रहा है, मेरे अंदर की सभी ऊर्जाएं जो बिखर रही थी वो अभी एकाग्र होते जा रहे हैं, मैं बिल्कुल शांत और रिलैक्स हूं। रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी पूर्ववत अवस्था में आएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। रिलैक्स एंड ओम शांति।
वाह बहुत सुंदर।
आपको केवल इतना ही करना है, पहले स्टेज में अपने आप को देखना है, आपको ये सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग अपने आप पता चल जाएगा।
बहुत ही सुंदर सचमुच डॉक्टर, आपने अभी बार बार जो अंदर देखना इसका प्रयोग किया, अभी हमको थोड़ा सा समझ में आया है कि कैसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है, और मैं समझती हूँ इसी से ही हम अपने जीवन को बहुत सुंदर अल्टीमेट बना सकते हैं। आपने हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन दी, आपका वक्त निकाल कर आप यहाँ आए, इसीलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दर्शकों, अभी हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन को तो बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि कोई 3 मिनट के अंदर हम अपना पूरा ऑब्जर्वेशन कर सके। उसके लिए तो काफी समय चाहिए, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, बीमारी भी बहुत काल की है। तो इसके लिए ही इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम फिर से आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।